أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد پیارے دوستوں اور ہمارے اس کاریکرم کے سارے درشکوں آپ سبھی کو میرا پیار بھرا سلام. ہم نے اپنے پچھلے کاریکرم سے بلکہ یہ کہا جائے کہ اپنے پچھلے کاریکرم کا انت جہاں پر ہم نے کیا تھا وہ رکوع سے سمبندھت کچھ مسئلے تھے جن کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. انہی مسائل کو ہم آج اپنے اس کاریکرم میں آگے بڑھائیں گے. آج ہم رکوع سے سمبندھت جن مسئلوں کے بارے میں بات چیت کریں گے اس کو اگر ہم ہیڈنگ کے طور پر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں تو کچھ مسئلے ہوں گے جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلے جو بات چیت ہماری ہوگی وہ اس بارے میں ہوگی کہ رکوع میں ہم کو کیا پڑھنا چاہیے, ہمارا ذکر کیا ہوگا, اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہم بات چیت کریں گے وہ اس بارے میں ہماری بات چیت ہوگی کہ اگر کوئی انسان کسی کارنوش رکوع نہ کر سکتا ہو تو اس کے مسئلے کیا ہیں, اس کے بارے میں کیا آدیش بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہم بات چیت کریں گے وہ ہماری بات چیت اس چیز پر آدھارت ہوگی کہ اگر کوئی انسان رکوع کرنا بھول جائے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے. تو سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں ہم اپنی بات چیت کو یہاں سے آرمبھ کریں گے وہ ہے ذکر یا رکوع میں کیا چیز پڑھی جائے. تو اس کے بارے میں ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ انسان اور نمازی اپنی نماز میں رکوع میں کوئی بھی ذکر پڑھ سکتا ہے, جو چاہے پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے, لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کا ذکر 3 بار سبحان اللہ اور 1 بار سبحان رب العظیم و بحمد سے کم نہیں ہونا چاہیے. یعنی کم رکوع کا کم سے کم ذکر یہ ہے کہ انسان 3 بار سبحان اللہ کہے یا 1 بار سبحان رب العظیم و بحمد کہے, یہ ذکر کم سے کم ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بھی ذکر نمازی کرنا چاہتا ہے اس کو اختیار ہے, وہ کر سکتا ہے اور جتنا زیادہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, اس میں نماز کے اوپر کوئی آپتی کوئی اشکال نہیں وارد ہوگا. اور اس کے بعد رکوع میں جس سمے انسان اور نمازی رکوع میں چلا گیا ہے جو چیز دھیان رکھنے والی ہے اور جو بہت مہتوپورن ہے وہ یہ ہے کہ جس سمے انسان رکوع میں گیا ہوا ہے اس کا بدن ٹھہرا ہوا ہو. یعنی کیا مطلب, یعنی جب انسان رکوع میں گیا ہے تو جتنا واجب ذکر ہے, یعنی وہی اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ یا 1 مرتبہ سبحان رب العظیم و بحمد ہے تو جتنی ماترا بھر یہ ذکر پڑھا جا رہا ہے کم سے کم اتنی ماترا میں انسان جب رکوع میں ہے تو اس کا بدن ٹھہرا ہوا ہو, ہل ڈل نہ رہا ہو, اور اگر ہل ڈل رہا ہے تو اس کے بارے میں نماز کے اوپر آپتی اور اشکال پیدا ہو جائے گا. اسی لیے یہاں پر کہا جاتا ہے اگر کوئی انسان رکوع میں پہنچنے سے پہلے, ابھی وہ قیام تھا, کھڑا ہوا تھا, ابھی رکوع میں جا ہی رہا تھا, اس نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا یا سبحان ربی العظیم و بحمد کہنا شروع کر دیا, تو اگر انسان جان بوجھ کر رکوع میں پہنچنے سے پہلے ذکر کو آرمبھ کر دے تو اس کی نماز, ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز باطل ہے, اس کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. اور اسی پرکار یہ مسئلہ اس سمے بھی پیش آئے گا جب انسان رکوع کر چکا ہے لیکن اس سے پہلے کہ اس کا واجب ذکر سماپت ہو اس سے پہلے اٹھنا شروع کر دیا, یعنی ابھی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہی رہا تھا یا سبحان ربی العظیم و بحمد کے انتم چرن پہ تھا, اس نے اٹھنا شروع کر دیا, تو اگر اس کا اٹھنا یہ کاریہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے تو اس کی نماز باطل ہے, اس کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. اس کے بعد جو آتا ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ جب انسان رکوع سے اٹھ چکا ہے تو یہیں پر مسئلہ, جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ نماز میں جو بہت مہتوپورن چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان بہت ٹھہر ٹھہر کے اور سکون کے ساتھ نماز ادا کرے اپنی, اس میں اسی وجہ سے رکوع کے بعد بھی انسان کے اوپر واجب, جب انسان رکوع سے کھڑا ہو رہا ہے تو رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد جب سجدے میں جانا چاہتا ہے تو اس کے اوپر واجب یہ ہے के रुकू से खड़े होने के बाद थोड़ी देर ठहरे ऊपर, उसके बाद सजदे में जाए, बिला फासला सजदे में ना जाए। और अगर ये कार्य जानबूझ के करता है, यानी अगर यूँ उठा, इतना ही उठा हुआ था, उसके बाद फ़ौरन सजदे में चला जाए, तो हमारे फुकहा ये कहते हैं कि इसकी ये नमाज़ बातिल है और उसको दोबारा नमाज़ पढ़नी होगी, ये नमाज़ उसकी स्वीकार्य नहीं होगी। ये वो मसले थे जो जिक्र से संबंधित थे, उसके बाद जो शरीर की जो अवस्था होना चाहिए उससे संबंधित थे। जैसा कि हमने प्रोग्राम के स्टार्टिंग ही में आपसे वादा किया था, उसके बाद जो हम मसले बयान करेंगे वो मसले ये होंगे, अगर कोई व्यक्ति किसी भी कारणवश रुकू ना कर सकता हो तो उसके बारे में क्या आदेश हैं। तो हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान ऐसा है कि किसी कारणवश, किसी बीमारी के कारणवश या कोई और मजबूरी से रुकू में नहीं झुक सकता है, तो उसके लिए अनिवार्य है कि जितनी मात्रा में संभव है उतनी मात्रा में वो झुके। यानी अगर यूँ इंसान खड़ा हुआ है और रुकू यहाँ पर होता है, तो अगर कोई इंसान इतना नहीं झुक सकता, जितना संभव हो इतना 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 जितना भी संभव हो उतना उसको झुकना होगा, और ये उसके ऊपर वाजिब है। अगर कोई इंसान खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहा है और अगर खड़े होकर रुकू नहीं कर सकता, यानी यूँ खड़ा हुआ है और खड़े होकर उसको झुकने में परेशानी होती है, कोई मजबूरी नहीं झुक सकता है, तो हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान खड़े होकर रुकू नहीं कर सकता है तो उसको चाहिए कि वो बैठ जाए और बैठने के बाद रुकू करे। इस प्रकार बैठ के रुकू करे और उसके बाद अपनी नमाज़ को जिस अवस्था में पढ़ रहा था उसी तरीके से अपनी नमाज़ को आगे बढ़ाए और नमाज़ को समाप्ति तक ले जाए। और तो ये तो वो उसके बारे में ये मसाइल हो गए जो इंसान खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहा है, यानी अगर खड़े होकर नमाज़ पढ़ा झुक नहीं सकता, कितना झुकेगा ये हमने बताया, और अगर खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहा है, खड़े होकर रुकू नहीं कर सकता है तो कैसे रुकू करेगा ये बताया हमने आपको। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान खड़े होकर नमाज ही नहीं पढ़ रहा होता है, वो किसी कारणवश किसी मजबूरी से वो बैठ के नमाज़ पढ़ रहा है। तो जो इंसान बैठ के नमाज़ पढ़ रहा है उसके रुकू के बारे में मसला क्या है, हमारे फुकहा ने क्या बयान किया। हमारे फुकहा यहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बैठ कर नमाज़ पढ़ रहा है तो उसके रुकू की अवस्था ये होगी कि इंसान बैठे बैठे अपने सर को जानों तक झुकाए, अपने रानों तक झुकाए, और बेहतर ये है कि वो अपने सर को इतनी मात्रा में झुकाए कि उसका सर सजदे की हद तक पहुँच जाए, सजदे में नहीं पहुँचे, यानी जहाँ पर सजदेगा है वहाँ तक पहुँच जाए, सजदे में ना रखे, तो ये उसके लिए बेहतर है। लेकिन कम से कम उसको अपने सर को जानों तक झुकाना चाहिए। ये मसले उन लोगों के लिए हैं जो लोग आम अवस्था में रुकू नहीं कर सकते हैं या खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, जो हमने आपके सामने अभी बयान किए। इसके बाद रुकू से संबंधित जो मसले पेश आ सकते हैं और जो हमारे फुकहा की तौज़ुल मसाइल वगैरह में मिलते हैं, वो है कि अगर कोई इंसान किसी भी कारण से रुकू ना कर सके, यानी रुकू भूल जाए, तो उसके लिए क्या हुक्म है। तो हमारे फुकहा ये कहते हैं अगर कोई इंसान रुकू भूल जाए और सजदे की तरफ चल पड़े, यानी यूँ खड़ा हुआ था उसको रुकू में जाना था और रुकू में जाने के बाद उसको सजदा करना था, नमाज का तरीका यही कि पहले रुकू बाद में सजदा होता है, लेकिन इंसान ने जिक्र वो सूरा और अलहम्द का सूरा और दूसरा सूरा पढ़ा उसके बाद सीधा सजदे की तरफ चला गया, तो अगर वो सजदे में पेशानी अपने माथे को रखने से पहले उसको ये बात याद आ जाती है कि उसने रुकू नहीं किया था, तो उसको चाहिए कि वो सीधा खड़ा हो जाए और खड़ा होने के बाद रुकू करे, रुकू करने के बाद सजदा करे और इस प्रकार नमाज को आगे बढ़ाए। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है कि अगर इंसान को सजदे में सर रखने से पहले याद आ गया तो उसके लिए आवश्यक ये है कि वो सीधा खड़ा हो और खड़ा होने के बाद दोबारा रुकू में जाए। ऐसा ना हो कि यूँ सजदे में आधा खड़ा हुआ तो वहीं से रुकू अख्तियार कर लिया, या पूरा खड़ा होने से पहले ही रुकू में चला गया। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी नमाज़ बातिल होगी। क्यों? क्योंकि उसने क़याम मुत्तसिल पर रुकू नहीं किया है। जैसा कि हमने आपको पहले अपने किसी प्रोग्राम में ये बात बताई थी कि अगर इंसान क़याम मुत्तसिल पर रुकू, जो कि रुकन है किसी भी कारणवश, अगर भूले से भी ये कर दे तो उसकी नमाज़ बातिल हो जाएगी। इसलिए इंसान के लिए ज़रूरी ये है, अनिवार्य ये है, वाजिब ये है कि अगर वो रुकू को भूल गया था तो सजदे में जाने से पहले याद आता है तो पहले सीधा खड़ा हो और उसके बाद अपने सजदे में रुकू करे, उसके बाद सजदा करे। उसके बाद मसला ये आता है कि इंसान ने रुकू भूल गया है और जब सजदे में पहुंच गया, यानी अपनी पेशानी सजदे में रख दी, उसके बाद उसको याद आता है कि ये हमने रुकू तो नहीं किया था, हम सीधे सजदे में चले गए, तो यहाँ पर क्या मसला होगा। तो हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं कि एहतियात वाजिब ये है कि वो खड़ा हो जाए, खड़ा होने के बाद रुकू करे और फिर सजदे को करे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे फुकहा ये कहते हैं कि वो सजदे से उठे, रुकू करे, फिर सजदे में जाए। लेकिन हमारे फुकहा आगे यहाँ पर ये भी कहते हैं कि इसके बाद इंसान को चाहिए कि अपनी वो नमाज़ को दोबारा भी पढ़े, क्योंकि उसने रुकू को, जो कि रुकन था, छोड़ दिया था और इजाफा और कमी नमाज में हो गई है। इस वजह से उसके लिए अनिवार्य ये है कि भले ही उसने रुकू को दोबारा किया है, फिर भी उसको चाहिए कि अपनी नमाज को दोबारा पढ़े और उसके बाद नमाज का अदा करे। ये वो चीज़ें थी जो रुकू से संबंधित हमारे मसले थे जो हमने आपके सामने बयान किए। जैसा कि हमने आपके सामने मुस्तकिल इस बारे में बयान किया कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो अंत में उसके उसकी उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो उससे संबंधित मुस्तहब मसले होते हैं। इसीलिए अपने हम इस क्रम को इस प्रोग्राम में भी जारी रखेंगे और यहाँ पर हम आपके सामने उन चीज़ों को बताएंगे जो रुकू में मुस्तहब होती हैं। इसमें रुकू में जो मुस्तहबात हैं वो ये हैं कि जिस समय इंसान रुकू में गया है तो जो रुकू का जिक्र पढ़ रहा है उसके लिए मुस्तहब 3 बार, 5 बार, 7 बार या इससे भी ज़्यादा रुकू के जिक्र को कहे। यानी अगर सुभान अल्लाह कह रहा है तो कम से कम 3 बार, 5 बार, 7 बार इस प्रकार कहे सुभान अल्लाह। ये उस एक नमाजी के लिए मुस्तहब है। और एक मुस्तहब चीज़ जो है रुकू में जाने से पहले वो ये है कि जिस समय इंसान रुकू में जाना चाह रहा है तो रुकू में जाने से पहले तकबीर कहे, और रुकू में जब इंसान पहुंच गया है तो उसकी निगाहें कहाँ पर हों, क्या वो सजदेगाह को देखे या कहीं और पर रखे रहे। तो हमारे फुकहा यहाँ पर कहते हैं कि मुस्तहब ये है कि जब इंसान रुकू में गया हुआ है तो उसकी निगाहें अपने दोनों पैरों के बीच के हिस्से को देख रही हों। यानी अगर ये दोनों पैर हैं तो उस पैर हैं तो उसकी निगाह यहाँ पर हो। और एक और चीज़ जो मुस्तहब है, कोई रुकू का जिक्र जब शुरू कर रहा है यानी सुभान सुभान अल्लाह कह रहा है या सुभान रब्बी अलाजीम व बिहम्दे कह रहा है तो उसके शुरू में, उसके आरंभ में या उसके अंत में सलवात पढ़े, या शुरू में सलवात पढ़े या उसके अंत में सलवात पढ़े। और उसके बाद जो एक और मुस्तहब है जो हम यहाँ पर आपके सामने बयान करेंगे, यहाँ पर मुस्तहबात के बाब को हम यहीं पर बंद कर देंगे, वो ये है कि जब इंसान रुकू कर चुका है, रुकू से खड़ा होता है तो खड़े होने के बाद कहे समय अल्लाह लेमन हमेदा। ये एक मुस्तहब चीज़ है। उसके अलावा भी बहुत सी मुस्तहब चीज़ें हो सकती हैं जिसको हम अपने इस प्रोग्राम में बयान नहीं करेंगे। तो ये वो मसले थे जो हमने रुकू से संबंधित थे, हमने आपके सामने बयान किए। तो अगर हम आज अपने इस प्रोग्राम के सारांश को आपके सामने बयान करना चाहें तो सारांश हमारा इस प्रकार होगा कि सबसे पहले जो हमने शुरू किया अपने प्रोग्राम को वो इस चीज़ से शुरू किया कि रुकू में कौन सा जिक्र पढ़ना चाहिए और रुकू में इंसान की हालत कैसी होनी चाहिए, क्या वो हिलता डुलता बदन हो या उसका बदन ठहरा हुआ हो, अगर हिल डुल रहा है तो उसके बारे में मसले क्या होंगे, ये हमने आपके सामने बयान किए। उसके बाद जो हमने आपके सामने मसले बयान किए वो मसले थे उस इंसान के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो किसी भी कारणवश रुकू नहीं कर सकता था, तो वो रुकू कैसे करेगा, और वो व्यक्ति जो बैठ के नमाज़ पढ़ रहा है उसके बारे में रुकू के क्या मसले होंगे, और अंत में जो हमने आपके सामने बयान किया कि अगर कोई इंसान रुकू भूल जाए तो उसकी सिचुएशन क्या होगी और किस सूरत में उसकी नमाज़ सही है और किस सूरत में उसकी नमाज़ गलत है। और अंत में हमने आपके सामने रुकू से संबंधित कुछ और मसलों को बयान किया जो उससे मुस्तहब चीज़ें थीं जो हमने आपके सामने बयान की। इसके बाद हम आपके सामने सजदे के मसले के बारे में बातचीत करेंगे लेकिन अपने किसी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।